नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसमें ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और अन्य वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा होगी। भारतीय दूतावास ने इसराइल और ईरान में बढ़ते तनाव को देखते हुए तेहरान से विद्यार्थियों को सुरक्षित निकाला। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने जोधपुर में कहा, प्रकृति का अत्यधिक दोहन भविष्य के लिए घातक। राज्य में मॉनसून प्रवेश का काउंटडाउन शुरू, अधिकतर स्थानों पर मॉनसून पूर्व की बारिश का दौर जारी। और प्रदेश भर में योग शिविरों और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से योग से जुड़ने की अलख जगाई जा रही है। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कनाडा के कनानास्किस में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे और निवेश से जुड़ी चर्चाओं में भाग लेंगे। श्री मोदी लगातार छठी बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी सहित अन्य नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। भारत कनाडा संबंधों में व्यापार, निवेश और भारतीय छात्रों के मुद्दे प्रमुख हैं। दुनिया भर में भारतीय प्रवासियों के लिए कनाडा सबसे पसंदीदा स्थान में से एक है। प्रधानमंत्री मोदी कल क्रोएशिया की राजधानी जागरेब पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों देशों के आर्थिक संबंध और मजबूत होंगे। ईरान की राजधानी तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा कारणों से भारतीय विद्यार्थियों को शहर से बाहर भेज दिया है। विदेश मंत्रालय की वक्तव्य में बताया गया है कि जिन नागरिकों के पास आने जाने की अपनी व्यवस्था है, उन्हें भी तनाव की स्थिति को देखते हुए शहर से बाहर जाने को कहा गया है। कुछ भारतीयों को आर्मेनिया से लगने वाली सीमा से ईरान से बाहर निकलने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। दूतावास लगातार भारतीय समुदाय के संपर्क में है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए 24 घंटे का नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। इसके लिए कई हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। टोल फ्री नंबर है 1800118797 और 9111230123। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच G7 समूह के नेताओं ने एक संयुक्त वक्तव्य जारी कर नागरिकों की सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया है। आज विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस है। ये दिन भूमि क्षरण को रोकने के लिए पूरी दुनिया में मनाया जाता है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस अवसर पर जोधपुर में कहा कि प्रकृति का विकल्प नहीं है। मनुष्य सब कुछ विकसित कर सकता है, किंतु प्रकृति को नहीं बना सकता। श्री यादव आज शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी में मरुस्थलीकरण तथा सूखा निरोधक रणनीतियों पर राष्ट्रीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि विकास के लिए प्रकृति के अत्यधिक दोहन के कारण धरती का तापमान बढ़ रहा है। हमें प्रकृति के दोहन के साथ साथ इसके संरक्षण पर भी ध्यान देना चाहिए।
अपने फूड चेन के लिए, अपनी मेडिसिन के लिए, अपने एनर्जी रिसोर्स के लिए, अपने ऑयल के सप्लाई के लिए और अपनी कॉस्मेटिक के लिए, जब इतने नेचर के ऊपर हम डिपेंड हैं, तो हम नेचर के साथ बैलेंस करके क्यों नहीं जी सकते। धरती को अगर बचाना है तो सबसे पहले इसके टेम्परेचर को मेंटेन किया जाए, वैकल्पिक ऊर्जा की ओर जाए, ग्रीन ऊर्जा की ओर जाया जाए, रिन्यूएबल की ओर जाया जाए।
केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कार्यशाला में कहा कि पश्चिमी राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा पीढ़ी दर पीढ़ी दी जाती है। उन्होंने कहा कि विज्ञान के साथ प्रकृति का संतुलन बनाए रखना होगा और इसके लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेनी होगी। भारत दुनिया में जमीन से सबसे ज्यादा पानी निकालने वाला देश है। ऐसे में जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की जरूरत है।
भारत क्योंकि दुनिया का सबसे ज्यादा जमीन से पानी निकालने वाला देश है। हमारी ग्रामीण पेयजल की आपूर्ति लगभग 80% से ज्यादा भूगर्भ के जल पर निर्भर करती है और शहरी क्षेत्र में भी लगभग 65% भूगर्भ के जल पर आधारित है। राजस्थान भर में 5 जून से लेकर के 15 जून के बीच में लगभग 88,000 ऐसे कार्यक्रम आयोजित हुए जिनमें लाखों लाखों लोगों ने सहभागिता दर्ज की है और इन कार्यक्रमों के माध्यम से लगभग 15,330 ऐसे ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज को रिजुविनेट करने के लिए उनकी स्वच्छता, उनके कैचमेंट एरिया को ट्रीट करने, उनके कैचमेंट एरिया के अंदर अवरोधों को समाप्त करने के लिए काम हुआ है।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पाली जिले में सड़क निर्माण के लिए 128 करोड़ रुपए से अधिक राशि मंजूर की है। सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत मिलने वाली इस राशि से सुमेरपुर और बाली क्षेत्र में सड़क निर्माण किया जाएगा। इस पर 36 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं सड़कों की मरम्मत और उन्हें चौड़ा करने के लिए 62 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। सड़क संपर्क मजबूत होने से जिले में आवागमन सुगम होगा, वहीं व्यापार, पर्यटन और कृषि क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राज्य में 1-2 दिन में मॉनसून के आने की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार गुजरात और आसपास के इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, इससे मॉनसून के दक्षिण राजस्थान की ओर बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। राज्य में अधिकतर स्थानों पर कल हल्की से मध्यम बरसात के आसार हैं, वहीं अगले 4-5 दिन में उदयपुर और कोटा संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इस बीच आज करौली, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, झालावाड़ और चूरू में कुछ जगह अच्छी बरसात हुई। भरतपुर में दोपहर बाद तेज अंधड़ के साथ हुई बारिश से कई जगह टीन टप्पर उड़ गए और होर्डिंग्स धराशायी हो गए। हनुमानगढ़ से हमारी संवाददाता ने बताया कि पानी के तेज बहाव के कारण कई जगह जल भराव की स्थिति बन गई।
हनुमानगढ़ जिले में कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के बाद अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया, जिसके कारण 2 दिन से लगातार बरसात हो रही है। कल शाम को भादरा में 32 mm बारिश दर्ज की गई, वहीं आज जिला मुख्यालय सहित कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश हुई, जिससे निचले स्थानों पर पानी भर गया, जिसके चलते आवागमन पूर्णतः बाधित हो गया। वहीं बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे। बिरानी इलाकों में मोट मूंग व बाजरे जैसे मोटे अनाज की फसल के लिए यह बारिश वरदान साबित होगी। मैना देवी, आकाशवाणी समाचार, हनुमानगढ़।
बीते 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान में कई जगह भारी बारिश हुई। सबसे ज्यादा 7.5 सेंटीमीटर बरसात सीकर में रिकॉर्ड की गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में आज योग बंधन कार्यक्रम रखा गया। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में हुए इस कार्यक्रम में डेनमार्क, इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, अर्जेंटीना सहित विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। ये इस साल योग दिवस के सिलसिले में चलाए गए 10 प्रमुख कार्यक्रमों में से है। आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने इस अवसर पर कहा कि विभिन्न देशों के ये प्रतिनिधि 5 दिन की भारत यात्रा में उन महत्वपूर्ण स्थानों पर भी जाएंगे जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोहों का आयोजन होना है। ये दौरा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लेने के बाद संपन्न होगा। प्रदेश में भी योग शिविर और सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम जारी हैं। आज मुख्यमंत्री निवास पर विशेष योग सत्र रखा गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विद्यार्थियों और सुरक्षा कर्मियों के साथ योगाभ्यास किया। अजमेर, पाली और झालावाड़ में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काउंटडाउन के तहत विभिन्न स्थानों पर योगाभ्यास कार्यक्रम हो रहे हैं। सरहदी जिले जैसलमेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि रेतीले धोरों पर योगा करते बीएसएफ जवान आकर्षक नजारा पेश कर रहे हैं।
भारत पाकिस्तान सरहद पर सीमा सुरक्षा बल देश की सुरक्षा के साथ साथ आम जन को योग के माध्यम से शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहने का संदेश दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तहत सीमा सुरक्षा बल के जवान और अधिकारी योग का अभ्यास कर रहे हैं। शांत व खुशनुमा माहौल में योगाभ्यास कर रही सीमा प्रहरी योग को अपने जीवन में शामिल करने तथा योग दिवस के आयोजन को सफल बनाने का भी संदेश दे रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी और जवान योगाभ्यास में उत्साह पूर्वक भाग ले रहे हैं। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आकाशवाणी जयपुर के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसके माध्यम से योग को जीवन शैली का हिस्सा बनाने की प्रेरणा दी जा रही है। इसी कड़ी में आज सुनिए योग विशेषज्ञ कामिनी यादव का संदेश।
योग हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि रूटीन के जो हम लाइफ में डेली नित्यक्रम करते हैं, उसी तरह से आप योग को भी आपके जीवन में अपनाइए, क्योंकि यह शारीरिक ही नहीं, यह आपके मानसिक स्तर पर भी कार्य करता है। तो मैं ये कहूंगी कि आप नियमित तौर पर योग को अपनाएं। आप 10 से 15 मिनट ही चाहे आप प्राणायाम करिए, चाहे तो कोई स्ट्रेच आसन करिए, लेकिन नियमित तौर पर 10 से 15 मिनट आप स्वयं के लिए निकालिए। योग ही जीवन है, यह सत्य है।
हज 2025 के मुकद्दस सफर पर गए यात्रियों का लौटना शुरू हो गया है। हाजियों की वापसी की पहली उड़ान आज सुबह जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची। राजस्थान हज कमेटी के अनुसार 28 जून तक 17 उड़ानों के जरिए हाजियों की वापसी होगी। राज्य से इस बार 3,408 यात्री हज यात्रा पर गए थे। कोटपूतली बहरोड में एसीबी की टीम ने पावटा प्रागपुरा नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी के आवास और अन्य ठिकानों की तलाशी ली। ईओ के खिलाफ पद का दुरुपयोग करने और आय से अधिक संपत्ति होने के आरोप पर यह कार्रवाई की गई। ऑपरेशन मनी मिंटिंग के तहत कार्रवाई में आरोपी के पास कई फ्लैट और भूखंड होने की बात सामने आई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसमें ऊर्जा, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और अन्य वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा होगी। भारतीय दूतावास ने इसराइल और ईरान में बढ़ते तनाव को देखते हुए तेहरान से विद्यार्थियों को सुरक्षित निकाला। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने जोधपुर में कहा, प्रकृति का अत्यधिक दोहन भविष्य के लिए घातक। राज्य में मॉनसून प्रवेश का काउंटडाउन शुरू, अधिकतर स्थानों पर मॉनसून पूर्व की बारिश का दौर जारी। और प्रदेश भर में योग शिविरों और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से योग से जुड़ने की अलख जगाई जा रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।